अब आगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है, आयत 107 से 110 तक, मस्जिद कुबा की अजमत और नाम नेहाद मस्जिद दरार की मजम्मत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना में एक तो मस्जिद नबी थी, जो मदीना और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके थे उसकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी थी। थोड़ा सा आगे जाइए तो मस्जिद कुबा भी बन चुकी थी। हिजरत के बाद सबसे पहली मस्जिद जिसकी बुनियाद डली वो मस्जिद कुबा थी। अब यहाँ दो मस्जिदों में बड़े आराम से मुसलमानों के लिए इबादत का अहतमाम हो रहा था। कुछ लोग थे, नामों में क्या उलझना है, जिनके दिलों में इस्लाम से बुगज था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे सिर्फ इसलिए कि आपके राज लें, आप क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं, यानी CID करते थे। अब जब वो मिलकर बैठकर अपनी कोई मीटिंग करना चाहते या आपस में कोई कॉन्स्परेसीज करते तो जगह नहीं थी। कुछ बाहर के लोगों में से एक शख्स अबू आमिर फासिक, उससे भी ताल्लुकात थे। अब वो डेलीगेशन आ रहा है, मेहमान आ रहा है, उसको कहाँ बिठाएं? डर ये था कि कहीं हमारी ये एक्टिविटीज़ खुल ना जाए। दिल में क्या कुछ था, नबी के मिशन को कमज़ोर करना, मस्जिद नबी में जाने वालों को रोकना और इसी तरह बैठकर फ्यूचर प्लानिंग करना। उसका एक उन्होंने हल सोचा, एक मस्जिद नुमा चीज़ बना दी और अल्लाह के नबी के पास आ गए कि सर आइए इधर नमाज़ पढ़ा दें, यानी इफ्तिताह आपके हाथों से हो। ये क्यों कर रहे थे, मोहब्बत थी नबी से? नहीं, सिर्फ सर्टिफाइड, ये सर्टिफिकेट चाहिए था, NOC चाहिए था कि चूंकि लोग कहेंगे नबी ने इफ्तिताह किया है तो ये अच्छे ही लोग होंगे और फिर कुछ लोग इधर आ जाया करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम उनको लालच और इस तरह के इंसेंटिव्स देकर अपनी तरफ मायल करेंगे। इरादा था मुसलमानों के उस गिरोह में तफरीक डालना, डिवाइड एंड रूल जिसको कहते हैं, ग्रुप विद इन ग्रुप। जब आपके पास वो आए और कहने लगे कि आप इफ्तिताह करें तो आप उन्हीं दिनों में तबूक के सफ़र की तैयारियों में थे। आपने कहा कि मैं अभी इस वक्त मसरूफ़ हूँ, वहाँ से वापस आकर कर देंगे। आपके दिल में कभी किसी के लिए बुरा नहीं आता था, यहाँ से ये भी पता चलता है। लेकिन अल्लाह ने तबूक से वापसी पे ये आयतें उतार दी कि कतन नहीं, आप जिसको मस्जिद समझ रहे हैं वो मस्जिद नहीं है, वो क्या है, वल्लज़ीन तखज़ु मस्जिदन दिरारन, वो लोग जिन्होंने बना ली मस्जिद ज़रर देने को। इसका नाम ही कुरान ने मस्जिद दरार रखा, आज इस नाम की मस्जिद को बनाता। लेकिन अफसोस के साथ अजायम और मकासद में बहुत सारी मस्जिद आज यही किरदार अदा कर रही हैं। जहाँ पहले एक मस्जिद है वहाँ एक और मस्जिद है, जहाँ अभी ज़रूरत भी नहीं वहाँ आप कर रहे हैं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं। और मसला भी तो ये है ना कि हमारी हर मस्जिद के साथ एक ठप्पा भी तो लगा हुआ है ना, मसलक का, जमात का, इदारे का, गिरोह का। आप देखिए कि आपकी वॉकिंग पे इतनी मस्जिदें हों, ठीक है अगर मस्जिदें इतनी हैं साइज़ में कि उस पूरे इलाके और कम्युनिटी के सब लोग पूरे समा नहीं सकते तो आप 10 मस्जिदें बना लीजिए, कोई बुरी बात नहीं। हर गली में होनी चाहिए मस्जिद, नो प्रॉब्लम, हर कोने पे मस्जिद हो, देर इज़ नो प्रॉब्लम। मसला क्या होता है कि जब एक मस्जिद में दूसरी मस्जिद के खिलाफ, एक गिरोह वाली मस्जिद में दूसरी गिरोह वाली मस्जिद के खिलाफ बातें हों और लोगों को तोड़ना जाए। इसलिए यहाँ चार बड़े बड़े काम हैं। मस्जिद दरार थी, कुफरम व तफरीकम बैनल मोमिनीन, कुफर भी था अंदर और मोमिनों के अंदर तफरका डालना चाह रहे थे, व इरसादल लिमन हारबल्लाह व रसूलहू, सबसे बड़ी बात यह थी, वो घात थी। जैसे शेर शिकार से पहले घात लगाता है ना, तो ये वो शख्स अबू आमिर फासिक की तरफ इशारा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करना चाहता है ना, उसने ये किस्म की अपने लिए कमीनगाह बना ली। वाला यहलिफुन्ना, और अगर आप उनसे पूछेंगे भाई सुनाइए ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो कस्में खाएंगे, इन अरतना इल्लल हुस्ना, हम तो हमारा तो इरादा ही नहीं था सिवाय नेकी के, हम तो नेकी के लिए कर रहे हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, हमें तो किसी पे कोई फतवा नहीं देना क्योंकि इस मस्जिद के बारे में तो कुरान ने आयत दे दी, तो हम बात कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जितनी भी मस्जिद हैं और आप जहाँ भी हैं, और मेरी बात सुनने वाले ऐसे भी लोग हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ पूरे शहर में एक भी मस्जिद नहीं है, 40-40 किलोमीटर पे लोगों को जुमा पढ़ने जाता है, पढ़ता है। और बाहर के मुल्कों में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, और ऐसी भी मिसालें मेरे दिमाग में है कि बीच में एक चुरंगी है और चारों तरफ चार मस्जिदें और चारों के मेंबर से जो आवाज़ें आती हैं वो एक दूसरे के खिलाफ आती हैं। आज गैर मुस्लिम परेशान है कि हम किस इस्लाम को कबूल करें। वो सिर्फ आपके लफ्ज़ मुस्लिम होने पर आपको मारना चाहता है, सिर्फ आपको नॉन मुस्लिम ही मुसलमान समझते हैं, आप तो अपने मसलक और फिरके के अलावा किसी को मुसलमान नहीं समझते। तो ये जो फिरका वारियत का जहर है इसने आज उम्मत को तोड़ दिया। आज हमारी नौजवान नस्ल का दिल क्यों नहीं लगता मस्जिदों में, उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ अल्लाह की याद ही नहीं है। अब देखिए, घर वाला घर ना हो तो वहाँ दिल नहीं लगता। मस्जिदों में जब स्पिरिचुअलिटी ना हो, रूहानियत ना हो, लोगों को अल्लाह से ना जोड़ा जाए, उनको अल्लाह की रज़ा ना महसूस हो, दिल नहीं लगता। आप घंटों आके बैठ के पढ़ के चले जाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ अल्लाह की मोहब्बत मिल रही होती है। आपको अल्लाह का प्यार एक सपारे के अंदर से आपको रदी अल्लाह अनहु रदवान के कितने नुकात मिल रहे हैं, और फिर उसका इतना फीडबैक आ जाता है। लेकिन मस्जिद के जुमे में सिर्फ आधा घंटा भी किसी को बैठना मुश्किल है। बिल्कुल आखिर में जाएंगे या जब पहली रकत शुरू हो चुकी होगी। तो इस वक्त के दीनदार मुबल्लिगीन, उलमाए कराम और बाकी वो सब जो किसी भी सोसाइटी की क्रीम है, उनका ये फ़र्ज़ है कि दिलों को जोड़ने वाली बातें करें, हक पे कायम रहें, लेकिन अपनी ज़ुबानों को और अपनी आवाज़ों को धीमा रखें प्यार और मोहब्बत से। वो कहते हैं ना कि जो दिलों को मोहते। आप बच्चे को रसगुल्ला खिला रही हैं और साथ पीछे से एक थप्पड़ मार रही हैं, या चीख के कहती है खाओ इसको, तो उसको अच्छा लगेगा? चॉकलेट तो वो शायद खा लेगा, इस तरह वो मिठाई नहीं खाएगा। तो बात अच्छी कीजिए, लेकिन तमीज़ और तहजीब के दायरों में करें। आज हक के नाम पे हमारी आवाज़ें इतनी ऊंची कि कान तो छोड़िए सरों से भी ऊपर से गुजर जाती है। और या फिर हम बातिल को इतनी मिठास वाले शीरे में डाल डाल कर पेश करते हैं कि वो दीन ही नहीं है। तो बहरहाल इस पे बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ने नबी को क्या कह दिया, ला तकुम फीही अबदा, आप कभी भी इसमें ना खड़ा हो जाएं, बल्कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवे पे है, पहले ही दिन से वो ज़्यादा हकदार है इस बात की कि आप उसमें खड़े हों। इससे मुराद मस्जिद कुबा। पहली मस्जिद वो थी, फरमाया उसमें वो रिजाल हैं जो पसंद करते हैं कि वो बहुत पाक रहें, और अल्लाह ताला पसंद करता है बहुत पाक रहने वालों को। यानी अल्लाह के नबी ने इस आयत के मुतल्लिक बताया कि इसमें अहले कुबा की तारीफ़ की गई, क्योंकि वो तहारत हासिल करने के लिए जो मिट्टी के ढेले थे उसके साथ साथ पानी भी इस्तेमाल करते थे। फिर साथ ही अल्लाह ने आगे मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा की तारीफ़ें कर दी। और आज भी हर वो मस्जिद जो वाकई अल्लाह से लोगों को जोड़ने के लिए, कुरान और सुन्नत के लिए कायम की गई, फरमाए अफमन अस्सस बुनयानहू अला तक्वा, बस क्या वो मस्जिद जिसकी बुनियादी तकवा पे है, अल्लाह के यानी अल्लाह का डर, अल्लाह से मोहब्बत और उसकी रज़ा पाने के लिए, वो खैर वो बेहतर है। अब मन अस्सस बुनयानहू अला शफा जुरुफिन, अब ये मस्जिद दरार की खामी है कि वो मस्जिद जो अल्लाह से जोड़ने के लिए बनती है, उसके मुकाबले में क्या वो मस्जिद या वो इमारत, जहाँ देखिए बुनियान कहा गया, मस्जिद नहीं कहा गया, ये मस्जिदें नहीं हैं, ये इमारतें हैं। बड़े बड़े आपको प्लाजे दिख जाएंगे, लेकिन वो मस्जिद नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर काम सही नहीं हो रहा। फरमाया कि ये जो उन्होंने बनाई है, ये तो रीबतन फ़ी कुलूबिहिम, इनके दिलों में शक और कुलक का ज़रिया बनेगी, इल्ला अन तक़त्ता कुलूबुहुम, इल्ला ये कि उनके दिल ही टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और अल्लाह खूब सुनने और जानने वाला। तो मेरे आपके लिए इस पे अमल क्या है, फिर अपने कामों की बुनियाद चेक कीजिए। याद रखिए कि ज़िंदगी में आप जो भी नेकी करते हैं, मस्जिद बनाने के अलावा भी, या वो दरर वाली होगी तो या वो तकवा वाली होगी। हर नेकी का काम असल में नेकी का नहीं होता। और इस पे एक जुमला लिख लीजिए जिस पे हमने अपने दूसरे दौरे कुरान में बहुत बात की थी, कि नेकी करना आसान है, नेक बनना मुश्किल है। आज भी बहुत सारे लोग, अगर आपको इस जुमले की डिटेल सुननी है तो आप रदी अल्लाह अन्हु रदुअन का 10वें पारे का जो पार्ट 3 था वो सुन लीजिएगा, आपको उसमें मिलेगा। और फिर 11वें पारे में भी आगे बात आती है। असल बात पता क्या है, हम बस बच्चों की तरह, लेगोस की तरह घर बनाते हैं ऊपर। बच्चा जितनी देर खेलता है उसका दिल भरता है, एक पाँव मारता है सारी इमारत को तोड़ के चला जाता है। यहाँ नियत कीजिए आज, अल्लाह हमसे नेकी का वो काम करवाए जो कयामत तक कायम रहे। और जो बिल्डिंग, जो इमारत डीप रूटेड होगी, उसको गिराना आसान नहीं। आज भी आप देखते हैं पुराने दौर की बिल्डिंग्स, बादशाही मस्जिद है, शाही कला है, कितने हज़ारों साल पुरानी इमारतें आज भी दुनिया में मिलती हैं। और आपको पता है यूरोप में अब पुराने घरों को गिराने की इजाज़त नहीं रही, कहते हैं आप ऐसे घर बन ही नहीं सकते, अंदर से पूरा घर वो चेंज कर ले जो मर्जी, बाहर से आप उसकी जो मेन बॉल और जो नीचे फाउंडेशन है वो नहीं छिट सकते, क्योंकि आज के घर तो कागज़ के घर लगते हैं उनके मुकाबले में। तो अल्लाह आपसे मुझसे नेकियों का वो बीज डलवाए, वो काम करवा ले कि जो हमारे बाद भी बाकी रहे, हमारी नस्लों की नस्लें उससे फ़ायदा उठाएं। और आप देखिए मस्जिद नबी आज भी मौजूद है, मस्जिद कुबा आज भी मौजूद है, और मस्जिद दरार का नाम भी नहीं है। वो नेकी का काम जो किसी के दिखावे में शुरू किया जाता है ना, जैसे इन्होंने किया, देखा देखी, वो नहीं पनपता। वो काम जो वन मैन शो होता है ना, मेरा नाम मैं करूँगी, वो मेरे साथ ही पहले बीमार होगा, फिर कमज़ोर होगा, फिर फौत हो जाएगा। मैं हज पे जाऊंगी तो वो काम भी हज पे जाएगा। आज कई लोग वन मैन शो पे बड़े मुतमईन हैं, मस्जिदों के टेक केयरर मैं हूँ, मैं अकेला काम करूँगा। कैसे आप अकेले काम कर सकते हैं? नेकियों के कामों में दूसरों को शरीक कीजिए, बुनियादों को गहरा करते जाएं, इखलास और तकवा और अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए, और बेस्ट टीम वर्क के साथ दूसरों को लेके चलें। इंशाल्लाह हर साल जैसे आप मस्जिद नबवी में और खाना काबा में तौसी देखते हैं, आपके बाद आपके लगाए हुए बीज आपकी नेकियों में तौसी होगी। और इखलास को अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता। ये है सबसे बड़ी दौलत जो आप किसी भी नेकी के काम के शुरू में डाल दें। और उसके बाद फिर आयत 111, ईमान वालों के नफ्स का सौदा। एक सौदा है अल्लाह ताला आपको ऑफर दे रहा है। इन अल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम, बेशक अल्लाह ने खरीद ली मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल, बदले में उनके लिए जन्नत है। करना क्या है? वो लड़ते हैं अल्लाह के रास्ते में, फिर या मरते हैं या मारते दिए जाते हैं। वादा है उनके ऊपर हक का, यानी सच्चा वादा है, तौरात और इंजील और कुरान, यानी तीन बड़ी ऑथेंटिक किताबों का रेफरेंस भी है। और कौन ज़्यादा वादे को पूरा करने वाला है अल्लाह से बढ़कर? फस्तबशिरू, बस तुम खुशखबरियाँ मनाओ अपने इस सौदे पे जो तुमने उसके साथ डील कर ली, और बेशक यही है कामयाबी बड़ी। और साथ ही इसकी अगली भी हिस्से को देख लीजिए, आयत 112 में जन्नत की कीमत भी बता दी। कोई भी डील होती है ना तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एग्रीमेंट होने से पहले प्रपोजल फॉर्म आता है, दोनों पार्टीज के बीच में एक MOU साइन होता है। जो आपने कहा मैं समझी, जो मेरी बात थी वो आपकी, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस एंड होप्स बिल्कुल एक जैसी हों। तो जन्नत की कीमत इधर क्या है? अत्ताइबून अलआबिदून अलहामिदून अस्साइहून अर्राकिउन अस्साजिदून अलआमिरून बिलमारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वलहाफिजून अलीहुदूदिल्लाही वबशिरिल्मुमिनीन। लस मोमिन को देखिए, तो या अल्लाह के महबूब बंदों की सिफात है। सबसे पहली बात तौबा इस्तगफार करते हैं। तौबा कब बंदा करता है? जब गुनाह होता है या अल्लाह की नेमतों का हक अदा नहीं किया जाता। फिर अल्लाह की बंदगी करने वाले, अल्लाह का शुक्र करने वाले, सियाहत करने वाले। अब ये सियाहत क्या, इसके दो मानी लिए गए, एक तो रोज़ा और एक इन नफी खल्क समावाती वल अर्थ के साथ फसीरु फिल अर्थ, यानी दुनिया में घूमते फिरते अल्लाह का काम करते हैं। हम तो दुनिया में इसलिए जीते हैं कि तेरा नाम रहे, यानी जिनकी ज़िंदगियों का मकसद अल्लाह के दीन को फैलाना है। फिर आगे झुकने वाले, आजजी करने वाले, रज़ाए इलाही के लिए सर बसजूद रहने वाले, रातों में अल्लाह के आगे झुकते हैं और दिन में नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के साथ जो सबसे बड़ी एक खूबी लगा दी, वो अल्लाह की हदों को कायम करने वाले और उसकी हिफाजत करने वाले। ये मुश्किल है बस, इसीलिए अलग लिख दिया आपके लिए। इबादत भी आसान, नमाजें भी आसान, रोज़े भी आसान, लेकिन खुशी के मौके पे, गम के मौके पे हदों में नहीं रहते। तलाक देते हुए हदों में नहीं रहते, निकाह और शादी की रस्मों में हदों में नहीं रहते, माली मामलात करते कराते हुए वो हदों को पार कर जाते हैं। अब मैं और आप अपना जायज़ा ले लें कि वेयर डू आई स्टैंड। आप देखिए कि जब सौदे की बात हुई ना, तो दुनिया में हर एक के पास इसका तजुर्बा ज़रूर होगा। आपने अक्सर तो ख़रीदा होगा, हम हर वक्त ही चीज़ें खरीदते हैं। कभी गोश्त आ रहा है घर में, तो कभी सब्जी आ रही है, तो कभी कपड़े हैं, तो कभी जूते हैं। कभी कुछ बेचा है आपने? बेचने वाले की ख्वाहिश क्या होती है? कि मेरा सबसे महंगा बिके। और ख़रीदने वाले की ख्वाहिश क्या होती है? कि मैं सबसे सस्ता लूँ। अब आप इमेजिनेशन में लाइए कि आप कोई चीज़ बेचने गए, कौन है ख़रीदार? आप कहते हैं कि मेरा नफ्स है, इसको ले लो। सबसे पहला आपका ख़रीदार आप खुद है। हमारा नफ्स, इन नफ्स लम्मारा तुम बिस्सू। फिर दूसरा हमारा ख़रीदार ये मुआशरा, लोग, पीपल प्लीज़र। और तीसरा ख़रीदार वो है जिसने आपको, मुझे, कटे पटे जिस्म की भी इतनी कीमत दे दी कि फरमाया वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता। आमतौर पे लाश की क्या कीमत है? डेड बॉडी की क्या कीमत है? वो माँ जो रो रही है, रो रही है अपने बच्चे के जाने पे, उसको कहा जाए अपने बच्चे की लाश खरीद लो, तो खरीदेगी? बीवी जाएगी शौहर के साथ कब्र में? अल्लाह उन लोगों की कटे फटे जिस्मों को खरीद के अनमोल कर देता है। जो जल्दबाज लोग हैं ना, वो अपने हाथों बिक जाते हैं। जो और ज़रा सा थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं वो लोगों के हाथों बिक जाते हैं, लेकिन जो सबसे साबिरून है वो अल्लाह के हाथों बिकते हैं। पहले वाले वो हैं जो भंगी, चरसी, नशई, लेथार्जिक, ना काम करना ना कुछ, सोए ही रहना, क्रिमिनल टाइप के लोग, उनकी अपनी नज़रों में भी इज्जत नहीं होती। दूसरी किस्म के मीडियोकर्स, माफ़ कीजिए आज ज़्यादा वो है, लोग क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी, समधियाना क्या कहेगा, इधर से बातें होंगी, यानी हम में से अक्सर लोग लोगों में बिकते हैं, और सहाबा जैसे खुशबख्त सबसे अपने आप को बचा बचा के रब के सामने पेश करते हैं। इसी पे कहा ना कि तू बचा बचा के न रख किसे कि तेरा आईना वो आईना। बंदे मोमिन सारी ज़िंदगी अपने आप को उस केक की तरह बचाता है जो आपने किसी के घर लेके जाना होता है। आप कहते हैं बच्चों को इसको हाथ ना लगाना, इसको छेड़ना ना, ये ख़राब ना हो जाए, ये मैंने किसी के घर लेकर जाना है। आप मैं अपनी जान को इतना कीमती बना के सजा के संवार के जब अल्लाह को पेश करेंगे तो अल्लाह उसकी कदर करेगा। इसके बाद आयत 113 से 14 में सिर्फ नस्बत काफ़ी नहीं, मा कान अलिन नबी वल्लज़ीना आमनू, ये लायक ही नहीं नबी के और ईमान वालों के कि वो बख्शिश मांगें मुशरिकीन के लिए अगरचे वो इनके करीबी रिश्तेदार भी हों। इसके बाद के जाहिर हो गया उनके लिए क्या कि वो जहन्नमी है, और ना ही था इस्तग़फार करना इब्राहिम का अपने बाप के लिए मगर एक वादे को पूरा करने के लिए जो वो उससे कर चुके थे। फिर जब वाज़े हो गया कि वो तो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए, क्योंकि इन्ना इब्राहिम अला वाहुन हलीम, इब्राहिम तो आहें भरने वाले, अब वाह कहते हैं आहें भरने वाले को, और हलीम बड़े बुरदबार थे। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, और बात यह है कि ज़िंदगी भर जब किसी को बार बार अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत मिले, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहुन, लेकिन वो एक्सेप्ट ना करे, एक बार इग्नोर किया, दूसरी बार फिर चिढ़े, तो क्या उसको मरने के बाद जन्नत की या अल्लाह की तरफ जाने की दुआ दे सकते हैं आप? ये तो अब अल्लाह के कानून को तोड़ रहे हैं, सीधी सी बात है। यानी मुशरिक जो शिर्क पे मर गया उसके लिए बख्शिश की दुआ करना अल्लाह के रूल्स को तोड़ना है। मिसाल दे देती हूँ, आपके हमारे मुल्क में शायद रूल्स की इतनी कह लीजिए कि दारादारी ना हो, लेकिन जो महजब मुल्क है जिन्होंने दुनिया में अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, वहाँ मुजरिम बच नहीं सकता सजा से, और जब कोई जुर्म करे और उसका जुर्म साबित हो जाए और गवर्नमेंट अपनी कोर्ट में उसको 20 साल की या 10 साल की सज़ा दे दे, क्या उस वक़्त कोई एक जाकर उसको उस सज़ा से छुड़वा सकता है? या जेल के कैदियों को जाके रातों को दरवाजे खोलकर निकालेगा तो वो उससे बड़ा मुजरिम होगा? बस जिन्होंने खुद अपने लिए जेल पसंद की, तो क्या आप उनको जेल से निकालेंगे? फिर इसके बाद आगे अगर देखें तो आयत 115-16 में अल्लाह किसी को ज़बरदस्ती गुमराह नहीं करता। यह आपके जहनों में उठने वाले सवाल का जवाब है कि फिर बेचारे, हाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप बेचारा, बेचारा नहीं होता, पीछे हम पढ़ कर आए हैं अलस्तु भी रब्बी को, अल्लाह ने सारी हुज्जतें तमाम करके आपको मुझे दुनिया में भेजा है कि हम हिदायत पे रहें, तो इस आयत में क्या बता दिया? और अल्लाह ऐसा तो नहीं है कि किसी कौम को गुमराह करे उनको हिदायत देने के बाद, यहाँ तक कि वाज़े हो जाए उनके लिए कि मा यत्तकून, कि किससे बचना है, क्या तकवा है, क्या अल्लाह से ताल्लुक़ का मामला होना चाहिए, और अल्लाह ताला तो हर चीज़ को जानने वाला है। यानी आगे अल्लाह ने अपनी कुछ चीज़ों को पेश करके बादशाही आसमान और ज़मीन की और ज़िंदा करना और मारना क्या बता दिया कि अल्लाह के पास पावर तो बहुत है, लेकिन अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी को नहीं गुमराह करता। अल्लाह ने हिदायत भी वादे कर दी, गुमराही भी वादे कर दी। तो यहाँ तक जो रूल्स आ रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि सूरत तौबा में गज़वात के तذکروں में साथ ही साथ तरबियत और तज़किया किया जा रहा है, इसीलिए अब अगली आयत में तंगी में साथ देने वाले गिरोह का तذکرہ है, आयत 117, जिसकी वजह से शायद इस सूरत का नाम सूरत तौबा है। क्या लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजरीन, बेशक अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली नबी की, या अल्लाह पलट आया नबी की तरफ और मुहाजरीन और अंसार पे, अल्लज़ीन तबऊहु फ़ी सातिल उसरा, वो लोग जिन्होंने तंगी की घड़ियों में भी आपका साथ दिया, उसके बाद के दिल टेढ़े हो रहे थे एक गिरोह के उनमें से, फिर लौट आया उनकी तरफ, बेशक वो बहुत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। और साथ ही फिर एक वाक़या जिसका अगली दो आयतों में तज़किरा है, आयत 18:119, सच्चे लोगों की रफाकत क्यों ज़रूरी है, यानी गुड कंपनी बंदे को कैसे नेकियों पिलाती है, इस पे है वो वाक़या जिसको आप कह सकते हैं वो तीन लोग वाले सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफ़ो, ये नहीं कहा वो पीछे रह गए बल्कि पीछे छोड़ दिए गए, कि वो तीन लोग भी जो पीछे छोड़ दिए गए, यहाँ तक कि तंग हो गई ज़मीन उन पे अपनी कुशादगी के बावजूद, और उनकी तो अपनी जानें भी तंग हो गईं, और उन्होंने ये गुमान कर लिया कि कोई जाए पनाह नहीं सिवाय अल्लाह के, और उसी की तरफ वो पलटते हैं, फिर वो तौबा कबूल करता है या पलटाया उनकी तरफ ताकि वो तौबा करें, यानी अल्लाह ताला उनको माफ़ करना चाहता है। और इसमें वाक़या है काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया, ये तीन नाम ग़ज़वे तबूक के नामों में बहुत अहम है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो मुनाफिकीन ने झूठे सच्चे उज़र देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में सच्चा होना कोशिश की, सच्चे होने की कोशिश कर दी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर पे क्यास करते थे, उनको पता सब होता था लेकिन बोलते नहीं थे। आप उनको बस कहते अच्छा अल्लाह आप पे रहम करे, अच्छा जी ठीक है आपकी मजबूरी थी आप इसलिए साथ नहीं गए। इतने में काब बिन मालिक की बारी आ गई। ये शायर भी थे, जवान थे, खूबसूरत थे और बड़े हेल्दी थे, और दुनियावी आसूदगी भी थी। कहते हैं कि उस दौर से ज़्यादा मेरे पास कुशादगी कभी नहीं थी। मैं अल्लाह के नबी के पास आया, मैंने कहा अल्लाह के नबी बातें मुझे भी करनी आती हैं, मैं अपनी बातों में आपको ऐसा उलझाऊंगा कि आप मुझे सच्चा समझेंगे, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास कोई उज़र नहीं है तबूक से पीछे रहने का, सिर्फ सुस्ती, डिली डाली। पहले मैं सोचता था कि अभी नहीं कर लें, अभी हो रही है, अभी सब जा रहे हैं, अच्छा ये है, और मेरी तो सवारी भी बड़ी तेज़ है, लोग निकल भी जाएंगे तो मैं पीछे से साथ मिल जाऊंगा, यानी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या अपने रिसोर्सेज को ज़रा कुछ ज़्यादा ही एडमायर किया। कहते हैं हत्ता कि मुझे पैगाम मिल गया कि आप कुछ कर गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग ज़रा थोड़ा सा आगे चले, मैं थोड़े से काम निपटा के आता हूँ। हत्ता के फिर मदीना शहर खाली हो गया और वहाँ सिर्फ औरतें और बच्चे या मुनाफिकीन थे। फिर मैंने सोचा तो मैंने कहा पता नहीं आप कहाँ रह गए होंगे, और उसके बाद तो फिर हर दिन मुझे गिल्ट होता रहा, गिल्ट होता रहा, यहाँ तक कि आप आज वापस आ गए, मेरे पास कोई उज़र नहीं, आप मेरे साथ जो भी मामला करें। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब आपने सच बोला है और अपना मामला अल्लाह के सामने डाल दिया है तो इंतज़ार कीजिए। कहते हैं जब मैं ये बात करके बाहर आया तो मेरे रिश्तेदार मुझे बुरा भला कहने लगे कि तुम कितने बेवकूफ़ और बुद्धू, देखो वो फलां कैसे बातों में लगा के ले गया, उसने बहाना कर दिया, ये तुम भी करते। कहते हैं कि अपने प्यारों की मलामत सुन के एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि जाके मैं भी कह दूँ नहीं नहीं अल्लाह के नबी ये नहीं ये था, लेकिन मैंने कहा कि क्या मेरी तरह किसी और ने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा हाँ दो और भी हैं तुम्हारे जैसे, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी। इन्होंने कहा अच्छा फिर मैं खड़ा हूँ, मैं सच बोलूँगा और इसके बाद जो भी हो। अल्लाह की तरफ से नबी सल्लम को जो वही उतरी वो क्या थी कि इनका सोशल बायकॉट किया जाए, यानी ताकि ये मतलूबा मेयार पे पूरे उतरें। वो ये है वो दाक़त अलैहिम अल-अर्द और दाक़त अलैहिम अन्फुसुहुम, मदीना शहर में कोई इनसे बात नहीं कर रहा। यहाँ देखिए कि डिसिप्लिन इसको कहते हैं, एक रूल बनता था सब फॉलो करते थे, अब ये मस्जिदों में जा रहे हैं, नमाज में पढ़ जाते हैं, कोई सलाम का जवाब नहीं देता, अपने हमसाए से पूछते हैं बताओ क्या मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, कहते हैं अल्लाह नौस्ती, बस किसी ने इनके सलाम का जवाब नहीं दिया। हत्ता के कुछ दिन गुजरने के बाद कहा गया कि अपनी बीवियों को भी उनके महके भेज दो। कहा अल्लाह के नबी तलाक दे दूँ, का नहीं तलाक नहीं दो बस वो चली जाए। वो बाकी दो तो कहते हैं घर में बैठ गए, वो बुज़ुर्ग भी थे बड़ी उम्र के थे, मैं मदीना शहर में गलियों में फिरता था लेकिन मेरी जान पर बड़ी हुई थी। और इस तरह 50 दिन का ये ट्रेनिंग सेशन पूरा हुआ, तौबा कोर्स कह लीजिए इसको, गिल्ट आपने किया क्या है, आपको समझ नहीं आ रही अपने बारे में, और बिल आखिर फिर जिस दिन अल्लाह के नबी पर वही के ज़रिए इनकी तौबा उतरी, फजर का वक्त था, तो वही शहर और वही दोस्त और वही हमसाए और रिश्तेदार जो पिछले दिनों में बात का जवाब नहीं दे रहे वो खुशी से मुबारकबाद देते हुए इनके घर की तरफ आ रहे हैं। क्या डिसिप्लिन है। जब इनकी तौबा कबूल हुई तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ये आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, और हकीकत है कि अगर आपको मुझे भी आसमान से पुकार आ जाए ना कि अल्लाह ने आपको बख्श दिया तो हमारे लिए भी इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। अल्लाह के नबी के दौर में ये मामलात हो गए। कहने लगे अल्लाह के नबी मैं अपनी सारी दौलत अल्लाह के रस्ते में दे दूँ, देखिए वो खुशी में जश्न नहीं मनाते थे, वो अल्लाह के आगे और झुकते थे। तो इस किस्से को यहाँ पेश किया गया। आप सही बुखारी में काब बिन मालिक की स्टोरी पढ़िए, आखिरी ज़िंदगी में नबीना हो गए थे, तो अपने बेटे का हाथ पकड़ के मस्जिद जाते हुए अपनी स्टोरी सुनाते थे। तो अब इस वक्त मुझे लगता है कि आपको और मुझे अपने दामन में झांकने की ज़रूरत है कि हम नेकियों से पीछे रहने को कभी बुराई समझते भी हैं कि नहीं।